रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद के सूरह जुहा की तिलावत और अनुवाद से करेंगे। कारी हैं हाशिम रोगनी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فيعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل و دیوان ہے۔ سوگند ہے دن کی جب وہ چھا جائے اور رات کی جب اس کا سناٹا چھا جائے، اور ہے پیغمبر، آپ کے پالنہار نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے اپرسن ہوا ہے، اور نشچے ہی پرلے آپ کے لیے سنسار سے اتم ہے، اور شیگر ہی آپ کا پالنہار آپ کو اتنا پردان کرے گا کہ آپ پرسن ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو اناتھ پایا اور شرن نہیں دی، اور آپ کو مارگ سے دور پایا تو گنتویہ تک نہیں پہنچایا، اور آپ کو نردھن پایا تو سمردھ نہیں کر دیا؟ اتہ اناتھ پر کرودھ نہ کیجیے اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیے، تتھا اپنے پالنہار کی انوکمپا کا ورنن کرتے رہیے۔
ایران شتابدی کے جھروکے میں
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान शताब्दी के झरोके में की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास भी जरूर पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें।
दोस्तों, वर्ष 1920 में होने वाले तख्ता पलट और उसके बाद रजा खान का सत्ता तक पहुंचना इस ईरानी समाज के ऐतिहासिक संघर्ष में एक नए चरण की शुरुआत माना जाता है। इस दौरान होने वाली घटनाओं और की जाने वाली कार्रवाइयों की वजह से कई तरह से बदलाव हुए। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अचानक हुए परिवर्तनों को कलाकारों, लेखकों और कवियों के कड़े विरोध और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वहीं इन विरोध और आलोचनाओं को सरकार ने आधार बनाकर और कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। साथ ही व्यापक स्तर पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। पहली ईरानी बोलती फिल्म का नाम दुख्तरे लुर है, जो वर्ष 1933 में अर्धशीर ईरानी द्वारा निर्देशित की गई थी। ये फिल्म एक ईरानी जोड़े की कहानी है जो काजार युग के असुरक्षित ईरान से पलायन करके भारत जाकर बस जाते हैं। फिल्म के अंत में ये जोड़ा ईरान लौट आता है। उनके ईरान लौटने के कारण फिल्म के अंतिम रजा शाह के दौर में देश में स्थापित हुई सुरक्षा को करार दिया गया है।
यह फिल्म शायद पहलवी सरकार के प्रचार और समर्थन में प्रकाशित और प्रसारित होने वाली पहली फिल्म थी जिसे सिनेमा स्क्रीन पर दिखाया गया था। फिल्म के बीच बीच में रजा खान की छवि को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार सरकार के दबाव के कारण इससे रजा शाह के नाम और छवि को फिल्म में शामिल किया गया था और क्रेडिट में फिल्म के दो नामों का उल्लेख किया गया था, दुख्तरे लुर या कल का ईरान और आज का ईरान। ईरान में सिनेमा का प्रवेश ईरान और ईरानियों के नए युग या आधुनिकता में प्रवेश के साथ ही हुआ है और यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सिनेमा ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है। यह कला उद्योग अन्य आधुनिक घटनाओं की तरह आयातित था और इसको भी बिना सोचे समझे और बिना किसी पहले की योजना और उद्देश्य से सामाजिक क्षेत्रों में फैला दिया गया था। इसका मकसद भी सरकार की मनमानी योजनाओं और विचारों को जनता के मनोरंजन के नाम पर एक उपकरण के रूप में उन पर थोपना था।
दोस्तों, ईरान में सिनेमा का जन्म समाज में गंभीर परिवर्तनों की शुरुआत के साथ हुआ। रेलवे, ऑटोमोबाइल, बिजली, टेलीफोन और अंततः सिनेमेटोग्राफी का आगमन ईरान में आधुनिकीकरण की शुरुआत के पहले संकेतों में से एक था। लेकिन ईरानी सिनेमा का इतिहास भ्रमित और हताश करने वाला था। इस तरह के कई मामलों में पहलवी युग के दौरान सिनेमा का वर्णन करने के लिए असफल सिनेमा, योजना के बिना सिनेमा, भटका हुआ, बिना तैयारी के, गलतियों से भरा हुआ और सिनेमा के पतन जैसी परिभाषाओं का उपयोग उस दौर के सिनेमा के लिए किया जाता है। हालांकि शुरुआत से ही सिनेमा सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय था, लेकिन ईरान में सिनेमा के विस्तार और रजा शाह की शाही सत्तावादी नींव के मजबूत होने के साथ सेंसरशिप और नियंत्रण कानून बनाए और लागू किए गए। इस आधार पर सबसे पहले जो कार्रवाई की गई वो 1930 में सिनेमा से संबंधित सभी कानूनों को रद्द कर दिया गया था। साथ ही रजा शाह की ओर से यह आदेश दिया गया कि सिनेमा के लिए बनाई गई समिति की अनुमति के बिना किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि वो कोई भी फिल्म बनाए और उसे जारी करे।
पहलवी शासन की ओर से आए आदेश में यह भी कहा गया था कि स्क्रिप्ट के आधार पर फिल्म के निर्माण को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा। इसीलिए फिल्म के निर्माताओं को कई खंडों वाले एक आवेदन पत्र को पूरा करने के लिए बाध्य किया गया था, जिसमें स्क्रिप्ट और इसमें शामिल लोगों और फिल्मांकन के समय और स्थान के बारे में विवरण शामिल थे। आवेदन की समय सीमा 3 महीने थी और यदि इसकी वैधता समाप्त हो जाती है तो फिर नए सिरे से आवेदन देने का प्रावधान था। फिल्म के निर्माण के बाद फिल्म को एक विशेष आयोग की उपस्थिति में दिखाया जाता था, जिसे सीधे तौर पर रजा शाह के आदेश से नियुक्त किया गया था। फिल्म की स्क्रीनिंग का लाइसेंस यह आयोग तभी जारी करता था जब इस आयोग के सभी सदस्य उस पर सहमत होते थे। यदि किसी एक ने विरोध कर दिया तो फिल्म स्क्रीनिंग का लाइसेंस जारी नहीं होता था। कुल मिलाकर फिल्म निर्माण से लेकर उसकी स्क्रीनिंग तक रजा शाह द्वारा गठित किए गए आयोग की सबसे मुख्य भूमिका होती थी। यह आयोग इस बात के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था कि वह चाहे तो आवेदन स्वीकार करे और न चाहे तो बिना किसी कारण के ही उसको स्वीकार न करे।
इन नियमों के आधार पर सेंसर की गई पहली फिल्म 1934 में अब्दुल हुसैन स्पंता द्वारा बनाई गई फिल्म फिरदौसी थी। कहा जाता है कि ये फिल्म सरकारी फंड से बनाई गई थी और रजा शाह ने फिल्म की निजी स्क्रीनिंग में सुल्तान महमूद गजनवी के सामने फिरदौसी की महाकाव्य कहानी पर आपत्ति जताई और कुछ दृश्यों को हटाने और बदलने का आदेश दिया। उन्होंने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि कैसे एक कवि ने सुल्तान गजनवी के सामने घुटने नहीं टेके। फिल्म के निर्माताओं को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी और यहां तक कि उन्होंने सुल्तान महमूद का किरदार निभाने वाले अभिनेता को भी बदल दिया। वहीं ग्रैंड सिनेमा आधुनिक शैली में तेहरान का पहला सिनेमा था, जिसे अली वकीली ने 1924 में ग्रैंड होटल में खोला था। 1927 में ईरानी सिनेमा का उद्घाटन के समय कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसने देश की जनता का ध्यान सिनेमा जगत की ओर खींच लिया। इस मुद्दे के कारण सिनेमा के शेयरधारकों ने 1935 में ईरानी सिनेमा का ग्रीष्मकालीन उद्यान खोला, जिसे तेहरान में रहने वाले अमीर लोगों और विदेशियों के लिए एक उपयुक्त अड्डा माना जाता था। वास्तव में बागचे सिनेमा ईरान उन सिनेमा उद्यानों में से था जहां मौसम के अनुसार समारोहों का आयोजन होता था और इसे मनोरंजन के लिए एक मुख्य स्थान माना जाने लगा था।
लालेजार स्ट्रीट पर ग्रैंड होटल सिनेमा और हॉल की स्थापना से पहले वहां निजी संगीत समारोह का आयोजन हुआ करता था। इस दौरान होने वाले संगीत समारोह में पारंपरिक गीतों, कविताओं और साहित्यिक शब्दों पर अधिक ध्यान दिया जाता था और इस कारण उन्हें सेंसरशिप और अधिक दबाव का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे पश्चिमी संगीत कार्यक्रमों और विदेशी समूह ने इन हॉलों में अपना रास्ता बना लिया और समय बीतने के साथ ईरान में संगीत का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में आपको बताया था कि रजा शाह के नेतृत्व में ईरान में एक ऐसे शासन की स्थापना हुई कि जिसने पश्चिम की संस्कृति को अपना रोल मॉडल बनाया और उन्हें ही देश में पूरी तरह लागू करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। रंगमंच उन मनोरंजनों में से एक था जिसका कुछ हद तक सांस्कृतिक पहलू था और लोगों द्वारा इसका स्वागत किया जाता था। दुनिया की नाटकीय कृतियों के अनुवाद के क्षेत्र में संवैधानिक क्रांति से पहले जो आंदोलन शुरू हुआ उसने इसी काल में गति पकड़ी। कई यूरोपीय नाटककारों की कृतियों का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसमें शेक्सपियर की कृतियां सबसे अधिक थी। इन अनुवादों में नकल और अनुकूलन का मुद्दा जारी रहा और ईरानी दर्शकों के लिए अनुकूलित किया गया।
दोस्तों, ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 20वीं शताब्दी के पहले दो दशकों में सांस्कृतिक क्षेत्र में साहित्यिक और सांस्कृतिक की संख्या में वृद्धि हुई और उनकी गतिविधियों का कुछ हिस्सा थिएटर और नाटकों पर केंद्रित था। इस अवधि के दौरान ईरान की पहली नाटक पत्रिका थिएटर शीर्षक से मिर्जा रजा खान तबातबाई नाइनी द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसी तरह अन्य प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं जैसे कि बहार और राध नामक साहित्यिक पत्रिका में नाटकों और नाटककारों की गुणवत्ता के बारे में लेख प्रकाशित किए जाते थे और कभी कभी थिएटरों की कड़ी आलोचनाएं भी की जाती थीं। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक शो का विनियमन आंतरिक मंत्रालय द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया था और सिनेमाघरों, मनोरंजन समारोहों, कैफे, संगीत कार्यक्रमों आदि में सार्वजनिक शो की रूपरेखा को परिभाषित किया गया था। ये विनियमन नाटकों के प्रदर्शन में सेंसरशिप का परिचय था, जो रजा शाह काल के दौरान स्थापित किया गया था और नाटकों की सामग्री को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।
रजा शाह द्वारा की गई इस कार्यवाही का उद्देश्य नाटकों और रंगमंचों को निचले स्तर तक लाना था, ताकि इसका प्रभाव भी सिनेमा की तरह उतनी सीमित रहे कि जितना वह चाहते थे। यह कदम ईरान में रंगमंच के लोगों के प्रयासों पर एक सचेत आघात था और इसने उसमें उतार चढ़ाव और दिशा बदल दी। यदि उस समय के कई थिएटर कलाकारों ने दबावों और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया, इस तरह नाटक लेखन ने एक अलग रास्ता अपनाया और ऐसी स्थिति में जब समाज में राजनीतिक घुटन व्याप्त थी, कलाकारों ने अंधेरे माहौल और सेंसरशिप के दबाव से थोड़ा बचने के लिए विदेशी कार्यों के अनुवाद और यहां तक कि व्यंग्य की ओर रुख किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1938 में थॉट कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन के गठन के साथ ही थिएटरों की गतिविधियां बंद कर दी गई और इस बारे में किसी भी तरह की कोई सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की गई।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
अनमोल बातें।
दोस्तों, अनमोल बातें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम सुप्रीम लीडर की नज़र में राजनीतिक संबंध के बारे में इमाम खुमैनी के सात आदर्शों पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनाई राजनीतिक मामलों में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बर्ताव के सात आदर्श को गिनवाते हुए इसे हर राष्ट्र के लिए राजनीतिक संबंध बनाने के लिए मजबूत और सुदृढ़ परिधि करार देते हैं। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि मैं महान इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बर्ताव के आदर्शों की कुछ विशेषताओं का वर्णन कर रहा हूँ। पहली, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह दुश्मनों और उनकी दुश्मनियों से मुकाबले के लिए साहसिक और सक्रिय बर्ताव करते थे। उनका बर्ताव कमज़ोर और रक्षात्मक नहीं था। इमाम खुमैनी कभी भी रक्षात्मक मुद्रा में नहीं आए, न ही कभी उन्होंने कमज़ोरी का आभास किया और न ही खुद को कभी कमज़ोर दिखाया। दुश्मनों के मुकाबले में पूरी शक्ति के साथ सक्रिय रूप से डटे रहते थे। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनाई कहते हैं कि दूसरी विशेषता, इमाम खुमैनी जोश में आने से परहेज करते थे। इमाम खुमैनी घटनाओं पर जोश और उत्साह में नहीं आते थे। कभी भी बुद्धि से हटकर किसी भी खाली भावना पर भरोसा नहीं करते थे। इमाम खुमैनी के फैसले, उनके साहसिक निर्णय हमेशा से उनकी मजबूत भावनाओं के साथ होते थे, लेकिन बौद्धिक हिसाब किताब पर आधारित। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इमाम खुमैनी की तीसरी विशेषता ये थी कि वो प्राथमिकताओं का ख्याल रखते थे, लेकिन प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। मान लीजिए कि संघर्ष के काल में इमाम खुमैनी की प्राथमिकता शाही व्यवस्था से मुकाबला करना था और उन्होंने इधर उधर के मुद्दों को अपने काम क्षेत्र में दाखिल होने नहीं दिया। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनाई कहते हैं कि इमाम खुमैनी की चौथी विशेषता ये थी कि वो जनता की क्षमताओं और शक्ति पर भरोसा करते थे। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ईरानी राष्ट्र को महान, जागरूक और सक्षम राष्ट्र समझते थे, उस पर भरोसा करते थे, उसको अच्छी नज़र से देखते थे, विशेषकर जवानों को अच्छी नज़र से देखते थे। سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ امام خمینی کی پانچویں وشیشتا یہ تھی کہ وہ دشمن پر بھروسہ ہی نہیں کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی ویوستھا کے کرتا دھرتا کے روپ میں اپنی 10 ورشیہ وبھوتی پورن اپستھتی کے دوران کبھی ایک کشن کے لیے بھی دشمن پر بھروسہ نہیں کیا۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ امام خمینی کی چھٹی وشیشتا یہ تھی کہ وہ راشٹر کی ایکتا اور ایک جٹتا کا بہت خیال رکھتے تھے، کہ یہ بھی ان دشمنیوں کے مقابلے میں امام خمینی کے آدرش پورن برتاؤ کی ایک انیہ وشیشتا تھی۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ساتویں وشیشتا یہ تھی کہ وہ ایشوریہ جیت اور ایشوریہ وعدے پر ایمان اور آستھا رکھتے تھے، یہی سب سے اہم اور اصلی بندو تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایشوریہ جیت پر بھروسہ کرتے تھے، انہوں نے اپنی ساری کوشش کی، اپنے سارے استتو سے میدان میں موجود تھے، لیکن ان کی آشا ایشوریہ فتح اور ایشوریہ شکتی پر نربھر تھی اور اللہ کی طاقت پر انہیں بھروسہ تھا۔ تو دوستوں، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
قرآن ایشوری چمتکار۔
شروتاؤ، کاریکرم قرآن ایشوری چمتکار کی ایک انیہ کڑی لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں، آشا ہے پسند کریں گے۔ میں ہوں زہرا زیدی اور کاریکرم میں میرا ساتھ دے رہے ہیں حسن عباس۔ تو آئیے پہلے سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 اور 46 کی تلاوت سنیں۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا۔
کیا تم نے اپنے پالنہار کی شکتی کو نہیں دیکھا کہ کیسے اس نے چھایا پھیلائی، اور یدی وہ چاہتا تو اسے استھر رکھتا، پھر ہم نے سوریہ کو اس کا پتہ دینے والی نشانی بنایا، پھر ہم اسے دھیرے دھیرے اپنی اور سمیٹ لیتے ہیں۔
اس سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انیک ایشور وادیوں کی انوچت آشاؤں اور ان کے غلط ویوہار کا الیکھ کیا گیا اور پیغمبر دوارا انہیں دیے گئے جواب کا الیکھ کیا گیا تھا۔ یہ آیتیں اور اس کے بعد کی کچھ آیتیں دھرتی اور آکاش میں ایشور کی نشانیوں کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہتی ہیں، ایشور کی ایک انوکمپا چھایا ہے جس سے رات کے استتو میں آنے اور منشیہ تتھا اس دھرتی پر رہنے والے سبھی جیووں کے آرام کا مارگ پرشست ہوتا ہے۔ سوریہ کی پریکرما کے دوران دھرتی کا آدھا بھاگ سدیو پرکاش میں رہتا ہے جبکہ دوسرا آدھا بھاگ اندھکار میں رہتا ہے۔ یہ اندھکار وستوتہ دھرتی کے اس بھاگ کی چھایا ہے جو سورج کے سامنے رہتا ہے۔
ہر دن کے انت پر یہ چھایا دھیرے دھیرے پرکٹ ہوتی ہے اور پھر پھیلنے لگتی ہے، جس سے رات استتو میں آتی ہے۔ یہ چھایا اگلے دن کے سوریودے تک جاری رہتی ہے۔ دوسرے شبدوں میں یہ ایسی چھایا ہے جو سورج کی روشنی سے پہلے آتی ہے اور سوریودے کے بعد دھیرے دھیرے سمٹ کر سماپت ہو جاتی ہے۔ स्पष्ट है कि दिन रात की व्यवस्था धरती के सभी जीवों और मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और तापमान के बहुत बढ़ने या बहुत अधिक कम होने को रोकती है।
अतः कुरान मजीद कुछ अन्य आयतों में कहता है कि यदि ईश्वर रात को प्रलय तक रखता तो कौन तुम्हारे लिए प्रकाश पैदा करता, या दिन को ही इतना लंबा कर देता तो कौन रात बनाता ताकि तुम उसमें आराम कर सको।
इन आयतों से हमने सीखा कि प्रकृति के बारे में सोच विचार ईश्वर को पहचानने का एक उत्तम मार्ग है, क्योंकि प्रकृति की रचना ईश्वर की शक्ति और तत्वदर्शिता के आधार पर की गई है।
सूर्य के चारों ओर धरती की परिक्रमा संयोग नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की युक्ति का परिणाम है।
आइए अब सूरह फुरकान की आयत नंबर 47 की तिलावत सुने।
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا।
वो ईश्वर वही है जिसने रात्रि को तुम्हारे लिए वस्त्र और निद्रा को विश्राम का कारण बनाया और दिन को जाग उठने और काम के प्रयास का समय बनाया।
इससे पहले की आयत में हर दिन के समापन और आरंभ में छाया के फैलने और सिमटने की ओर संकेत किया गया था। यह आयत उसके परिणाम अर्थात दिन और रात के अस्तित्व में आने का उल्लेख करती है और कहती है कि रात का अंधकार उस वस्त्र की भांति जो मनुष्य सोने के समय पहनता है सभी जीवों को छिपा लेता है और उनके आराम का मार्ग प्रशस्त करता है, ताकि अगले दिन का सूरज निकलने के बाद वे आजीविका कमाने के लिए तैयार हो जाएं।
स्वाभाविक रूप से रात का अंधकार लोगों की बहुत सी गतिविधियों को बंद करने का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यक्ति के सो जाने से उसके शरीर की गतिविधियां भी न्यूनतम सीमा पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि सोते समय हाथ पैर और इसी प्रकार के दूसरे अंगों का काम रुक जाता है और हृदय तथा फेफड़े जैसे कुछ अंग अधिक आराम से अपना काम करते हैं।
इस आयत से हमने सीखा कि रात दिन की आवाजाही लक्ष्यों और तत्वदर्शी कार्यक्रमों के अंतर्गत है। दिन और रात लोगों के लिए ईश्वर की अनुकंपाएं हैं।
मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है और रात आराम तथा सोने के लिए सबसे अच्छा समय है।
दिन काम का समय और रात आराम का समय है। इन समयों में परिवर्तन मनुष्य को क्षति पहुंचाता है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है।
आइए अब सूरह फुरकान की आयत नंबर 48 और 49 की तिलावत सुने।
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا।
اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی دیالوتا کی ورشا کے لیے آگے آگے شبھ سوچنا بنا کر بھیجا اور ہم نے ہی آکاش سے پویتر کرنے والا سوچھ جل اتارا ہے ताकि हम उसके द्वारा निर्जीव भूभाग को जीवन प्रदान करें और उसे अपने पैदा किए हुए बहुत से चौपायों और मनुष्यों को पिलाएं।
ये आयतें मनुष्य के कार्य और आराम के समय के रूप में दिन और रात जैसी ईश्वरीय अनुकंपाओं के उल्लेख के बाद हवा और वर्षा की अनुकंपाओं की ओर संकेत करती हैं और कहती हैं कि सागरों और समुद्रों के ऊपर से लेकर धरती के सूखे क्षेत्रों पर बादलों का चलना हवाओं के माध्यम से होता है कि जो प्यासी जमीन को वर्षा की शुभ सूचना देते हैं।
सूखे क्षेत्रों में पानी पहुँचाने के लिए मनुष्य बड़ी बड़ी नहरें बनाता है, किंतु ईश्वर आकाश से पानी के स्थानांतरण का काम करता है। सूरज की किरणें समुद्र के पानी को भाप बनाकर ऊपर ले जाती हैं। ऊपर की ठंडी हवा भाप को बादल में बदल देती है और इसके बाद मुख्य भूमिका हवाएं निभाती हैं। वे बादलों को संसार के सभी स्थानों तक पहुंचाती हैं और जहां आवश्यक होता है रुक जाती हैं तथा धरती को पानी से तृप्त करती हैं।
इन आयतों में ईश्वर ने बारिश के पानी का परिचय दो विशेषताओं से कराया है, एक उसकी पवित्र करने की विशेषता और दूसरी प्यास बुझाने की विशेषता। ये दोनों ही मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहली विशेषता स्वास्थ्य और सफाई में और दूसरी आहार और प्रगति में।
इन आयतों से हमने सीखा कि हवाओं का चलना और पानी का बरसना संयोग नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की युक्ति के आधार पर है।
शरीर से जुड़े मामलों में मनुष्य पशुओं की पंक्ति में है और उन पर श्रेष्ठता नहीं रखता। यदि वो परिपूर्णता प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आत्मिक और आध्यात्मिक आयाम पर ध्यान देना चाहिए।
पानी स्वयं पवित्र भी है और पवित्र करने वाला भी है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
कुरआनी किस्से।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है स्वाति और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरह फतह की 15 से 17 तक की आयतें कब नाजिल हुई थीं। इस्लाम धर्म के उदय से पहले अज्ञानता के काल के अरब भी मस्जिदुल हराम पर विशेष ध्यान देते और सम्मान करते थे। वे हर साल ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब में हज के संस्कारों को अंजाम देने के लिए मक्का जाते थे और जो भी मस्जिदुल हराम में दाखिल हो जाता था वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता था। इस प्रकार से कि अगर कोई व्यक्ति मस्जिदुल हराम में दाखिल हो जाता था और वहाँ पर उसका सामना अपने घोर दुश्मन से भी हो जाता था तब भी वो उसे तलवार उठाने का अधिकार नहीं होता था।
मस्जिदुल हराम की पवित्र भूमि कुरैश के नियंत्रण में थी। पैगंबर इस्लाम और मुसलमान जब मक्का से मदीना पलायन करने गए तो कुरैश ने उन सबको मस्जिदुल हराम की जियारत से वंचित करना चाहा। मुसलमान भी इस बात से नाराज थे कि अब उन्हें हज करने और मस्जिदुल हराम की जियारत से वंचित कर दिया गया है। यहां तक कि 6 हिजरी कमरी में पैगंबर इस्लाम ने उन्हें सूचित किया कि शीघ्र ही वे पूरी शांति व सुरक्षा के साथ मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे।
इस आधार पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र नगर मदीना और उसके आसपास के लोगों को हज करने के लिए आमंत्रित किया और लगभग 1400 लोगों ने पैगंबर इस्लाम के निमंत्रण पर स्वीकार करके हज के लिए वो मदीना और मक्के के लिए रवाना हो गए। परंतु डरपोक और लालची लोगों का एक गुट पैगंबर इस्लाम के साथ नहीं गया और उसने बहाना किया कि हम माल और परिवार के चक्कर में फंसे हुए हैं।
उन लोगों ने पैगंबर इस्लाम से बहाना किया और कहा, हे पैगंबर इस्लाम, आप हमारी मजबूरी समझिए, हमें माफ कीजिए और अल्लाह से हमारे लिए क्षमा याचना कीजिए। अलबत्ता इन बातों के अलावा उनकी दिली आस्था यह थी कि पैगंबर इस्लाम और उनके अनुयायी जो मदीना से मक्का हज करने के लिए जा रहे हैं वे दोबारा मदीना वापस नहीं आएंगे क्योंकि मक्का के काफिर और अनेकेश्वरवादी उन सब की हत्या कर देंगे।
दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जो मुसलमान मदीना से मक्का हज करने के लिए गए थे वे मदीना लौट आए और उन्होंने मदीना वासियों से बताया कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सूचना दी है कि शीघ्र ही वे यहूदियों पर हावी हो जाएंगे। यह मदीना वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी और ये खबर शीघ्र ही पूरे मदीने में फैल गई। इस खबर से बहुत से लोग चकित थे कि वे ये कैसे होगा क्योंकि यहूदी बहुत मजबूत थे। जो मुसलमान मदीना से मक्का पैगंबर इस्लाम के साथ हज करने नहीं गए थे वे दूसरों से अधिक यहूदियों के खिलाफ होने वाली लड़ाई में भाग लेने के लिए तैयार थे। उसकी एक वजह थी कि वे यहूदियों के साथ होने वाले युद्ध में माल गनीमत हासिल करना चाहते थे।
खैबर नाम का इलाका यहूदियों के नियंत्रण में था और वह बड़ा उपजाऊ था। वहां रहने वाले यहूदी खेती करने, हथियार बनाने और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दूसरे हथियारों के निर्माण में निपुण थे। वहां रहने वाले यहूदियों की संख्या लगभग 20,000 थी, जिसमें कुछ मशहूर बहादुर भी थे। उन्होंने खाने पीने की विभिन्न चीजों को संचित कर रखा था इस प्रकार से कि अगर 2 साल तक खैबर नाम के दुर्ग का दरवाजे को बंद रखा जाए तब भी कोई इंसान भूखा प्यासा नहीं रहेगा।
इस प्रकार की स्थिति में पैगम्बर इस्लाम ने मुसलमानों को यहूदियों की जमीन पर नियंत्रण करने की खुशखबरी दी और यहूदियों के खिलाफ होने वाली जंग में वे मुसलमान भाग लेने के लिए आगे आगे थे, जो इससे पहले मदीना से मक्का हज करने के लिए पैगम्बर इस्लाम के साथ नहीं गए थे। परंतु पैगम्बर इस्लाम ने साफ साफ कह दिया कि इस जंग में वही मुसलमान भाग ले सकते हैं जो मदीना से मक्का उनके साथ गए थे, और जंग में प्राप्त होने वाला माल गनीमत भी उन्हीं से विशेष होगा।
पैगम्बर इस्लाम की इस बात से उन लोगों को बहुत तकलीफ हुई जो इससे पहले मदीना से मक्का पैगम्बर इस्लाम के साथ नहीं गए थे। उन मुसलमानों को जो तकलीफ हुई थी उसकी एक वजह यह थी कि उन्हें पूरा विश्वास था कि यहूदियों के साथ होने वाली जंग में मुसलमानों की जीत निश्चित है और इस जंग में बहुत माले गनीमत प्राप्त होगा। इसलिए उन मुसलमानों को पूरी कोशिश थी कि हर संभव मार्ग से पैगम्बर इस्लाम को राजी करें ताकि वे इस जंग में भाग लेने की अनुमति दे दें। इस आधार पर वे चिकनी चुपड़ी बातों के साथ पैगम्बर इस्लाम की सेवा में गए और कहा, हमने जो किया उससे तौबा करते हैं और अतीत की भरपाई के लिए हम निष्ठा भाव से इस जंग में भाग लेकर इस्लाम और कुरान की सेवा करना चाहते हैं। परंतु उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि पवित्र कुरान ने उनके दिली भेद का रहस्य उद्घाटन पहले ही कर दिया था और उन्हें संबोधित करके कहा कि अगर सही कह रहे हो तो इसके बाद वाली जंगों में भाग लो और उसमें लड़ो। यह वह मौका था जब महान ईश्वर ने पवित्र कुरान के सूरे फतह की 15-17 तक की आयतों को नाजिल करके उनके दिलों के भेदों को बयान कर दिया।
दोस्तों, इन आयतों में महान ईश्वर कहता है कि जिन लोगों ने सुलह हुदैबिया में भाग नहीं लिया, जब आप खैबर को जीतने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वे शीघ्र ही कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दीजिए। ये लोग अल्लाह के कलाम को बदलना चाहते हैं। हे पैगंबर, आप इनसे कह दीजिए कि तुम लोग हरगिज हमारा अनुसरण नहीं करोगे। अल्लाह ने तुम्हारे बारे में पहले से बता दिया है कि ये लोग कहेंगे कि आप लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं। उनमें से कुछ लोगों के अलावा अधिकांश लोग नहीं समझते हैं। हे पैगंबर, बद्दू अरबों से कह दीजिए कि जल्द ही तुमसे एक कौम से लड़ने के लिए कहा जाएगा कि उनसे लड़ो या इस्लाम ले आएं। अगर तुम लड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर तुम पीछे हट गए जैसा कि पहले पीछे हट चुके हो तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक दंड देगा। अगर अंधा, लंगड़ा और बीमार जंग में भाग न ले सके तो कोई बात नहीं, और जो अल्लाह और उसके पैगंबर के आदेशों का पालन करेगा तो अल्लाह उसे ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा कि जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, और जो मुंह मोड़ ले तो अल्लाह उसे कड़ा व दर्दनाक दंड देगा।
पवित्र कुरान के एक ईरानी व्याख्याकार अल्लामा ताबाताबाई सूरह फत की 15वीं आयत की व्याख्या में अपनी प्रसिद्ध किताब अल मिजान फी तफसिरिल कुरान में लिखते हैं, जो लोग पैगंबर इस्लाम के आदेशों का अनुसरण नहीं करते हैं वे अज्ञानी और नासमझ इंसान हैं। यह बात उनकी इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि वे कहते हैं आप हमसे ईर्ष्या करते हैं, जबकि पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि कदापि तुम हमारा अनुसरण नहीं करोगे, क्योंकि जो भी इंसान पैगम्बर इस्लाम का अनुसरण नहीं करता है वास्तव में उसका न तो ईमान सही होता है और न ही वह बुद्धिमान होता है, क्योंकि वह इस बात को नहीं समझता है कि पैगम्बर मासूम होता है और महान ईश्वर के आदेश के बिना किसी को भी किसी चीज का आदेश नहीं देता है।
दोस्तों, महान ईश्वर ने सूरह फतह की 15वीं आयत के अंत में जो ये कहा है कि ला यफकहूना इल्ला कलीला, अर्थात थोड़े से लोगों के अलावा कोई नहीं समझता, तो इससे ये बात समझ में आती है कि दूसरे शब्दों में समस्त बुराई, कठिनाई और समस्या की जड़ अज्ञानता है।
ज्ञान वह प्रकाश है जिसकी रोशनी में इंसान, समाज और देश प्रगति करता है। ज्ञान के बिना कोई भी समाज व इंसान प्रगति नहीं कर सकता, और जिस समाज या इंसान के पास से ज्ञान नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान रक्त संचार की तरह है, जिस तरह इंसान को जिंदा रहने व आगे बढ़ने के लिए शरीर में रक्त संचार जरूरी है, उसी तरह समाज को आगे बढ़ने के लिए ज्ञान जरूरी है। अज्ञानता के अंधकार में रहकर कोई भी इंसान या समाज आगे नहीं बढ़ सकता। महानेश्वर पवित्र कुरान में कहता है कि क्या ज्ञानी व अज्ञानी बराबर हैं? यानी जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है और जिसके पास ज्ञान नहीं है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुछ लोग ज्ञान की मिसाल इंसान की आंखों से देते हैं और उनका कहना है कि जिस तरह इंसान आंखों के सहारे आगे बढ़ता है, उसी तरह इंसान ज्ञान के सहारे विकास के मार्गों को तय करता है।
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज्ञान एक प्रकाश है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है डाल देता है। वास्तव में जो इंसान सही अर्थों में ज्ञान हासिल करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो अपनी अंतरात्मा को सही करे और गुणों से उसे स्वच्छ व पवित्र बनाए, क्योंकि ज्ञान ईश्वरीय प्रकाश है और महान ईश्वर अपने प्रकाश को उस दिल में नहीं डालता जो अवगुणों से दूषित होता है। अगर कोई इंसान किसी से पानी मांगता है तो पानी देने वाला सबसे पहले पात्र को देखता है। अगर पात्र पाक साफ नहीं होता है तो उसे सबसे पहले वो पाक साफ करता है, उसके बाद उसमें पानी देता है। उसी तरह जो इंसान ये चाहता है कि ईश्वर उसके दिल में अपने ज्ञान का प्रकाश डाल दे, तो सबसे पहले उसे अपने दिल को समस्त अवगुणों से पाक करना चाहिए, उसके बाद ईश्वरीय ज्ञान की आकांक्षा करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
आशा की किरण।
दोस्तों, कार्यक्रम आशा की किरण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेरदादी और अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि आज दुनिया के अत्याचारी जो महामुक्तिदाता के आगमन और उनके जुहूर के विरोधी हैं, तो उसकी मुख्य वजह यह है कि उन्हें भली भांति ज्ञात है कि महामुक्तिदाता के आगमन के बाद न अत्याचार होगा और न ही अत्याचारी। इसीलिए वे अपने अत्याचार को जारी व बाकी रखने के लिए किसी भी प्रकार के संकोच से काम नहीं ले रहे हैं, परंतु जो लोग महामुक्तिदाता के जहूर का इंतजार कर रहे हैं वे उनके जहूर की भूमि प्रशस्त करने की दिशा में प्रयासरत हैं।
जो इंसान महामुक्तिदाता के आने के महत्व को नहीं समझता, वो कभी भी उनके जुहूर की दिशा में काम नहीं करेगा। इस प्रकार के इंसान की मिसाल उस व्यक्ति की भांति है जिसके पास फिरोजा और अकीक जैसे मूल्यवान पत्थरों की खदान हो, परंतु वो उन पत्थरों की कीमत से ही अवगत न हो। तो जो इंसान इन पत्थरों की कीमत से अवगत नहीं होगा, वो कभी भी उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करेगा। ठीक यही हाल उस इंसान की है जो महामुक्तिदाता के जुहूर के महत्व से ही अवगत नहीं है। جو انسان ان کے ظہور کے مہتو سے اوگت ہوگا اور اسے یہ پتا ہوگا کہ ان کے ظہور کے کیا فائدے ہیں تو وہ اس دشا میں ضرور پریاس کرے گا۔
ماں مکتی داتا کے ظہور کی آستھا کے سمبندھ میں ایک مہتوپورن وشے یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پورا وشواس ہو چکا ہے کہ جو مہا مکتی داتا آنے والا ہے وہ ایشوری پرتندھی ہے اور اسے کسی پرکار کی کوئی غلطی نہیں ہوگی اور وہ سمست لوگوں کے ساتھ سمان ویوہار کرے گا۔ وہ لیش ماتر بھی کسی کے ساتھ کسی پرکار کے بھید بھاؤ سے کام نہیں لے گا۔ اس پرکار کی آستھا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ ہمیشہ اپنے امام کے ساتھ رہیں گے اور وہ کبھی بھی امام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔
جن لوگوں کو اس بات کا پورا وشواس ہوگا کہ ماں مکتی داتا کا ساتھ چھوڑنے کا ارتھ گمراہ ہی ہے اور گمراہ انسان کا ٹھکانہ نرک ہے تو کوئی بھی انسان نرک کے راستے پر نہیں جانا چاہے گا۔ روایتوں میں ہے کہ جب انتم سمے ہوگا تو لوگوں میں گمراہی بہت ادھک ہو جائے گی۔ اتا ایمان وہ پونجی ہے جسے کسی بھی چیز سے نہ تو بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی بدلا جا سکتا ہے۔ آخری زمانے میں ایمان کو سرکشت رکھنے کے سمبندھ میں امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دعا کی سفارش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہے ایشور تو خود مجھے پہچنوا، کیونکہ اگر تو نہیں پہچنوائے گا تو میں تیرے پیغمبر کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اے ایشور تو اپنے پیغمبر کو مجھے پہچنوا، کیونکہ اگر تو اپنے پیغمبر کو نہیں پہچنوائے گا تو میں تیرے پرتنیدھی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ ہے ایشور اگر تو اپنے پرتنیدھی کو مجھے نہیں پہچنوائے گا تو میں اپنے دھرم میں گمراہ ہو جاؤں گا۔
آشا کی کرن۔ مانوتا کے موکش داتا امام مہدی علیہ السلام پر سٹیک بحث پر آدھارت کارکرم آشا کی کرن۔ ہر ہفتے بدھوار کو۔
دوستو، مہا مکتی داتا کے ظہور کے سچے انتظار کرنے والے ویکتی کے لیے سب سے مہتوپورن بات یہ جاننا ہے کہ مہا مکتی داتا کون ہیں اور وشیشتائیں ان کی اور ان کی فضیلتیں کیا ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اس سمبندھ میں فرماتے ہیں کہ وہ یعنی مہا مکتی داتا امام مہدی لوگوں میں سب سے بڑے گیانی، سب سے بڑے تتودرشی، پرہیزگار، سہنشیل، دھیرنوان، شماشیل اور اپاسک ہیں۔ اسی پرکار پیغمبر اسلام نے مہا مکتی داتا کو لوگوں میں سب سے بڑا گیانی اور تتودرشی بتایا ہے۔
مہا مکتی داتا کے ظہور کا انتظار کرنے والے انسان کو جب یہ گیات ہوگا کہ جس کی وہ پرتیکشا کر رہا ہے وہ کوئی سامانیا ہستی نہیں ہے بلکہ وہ سدگنوں کی پرتیمورتی ہے، وہ ایشوریہ پرتندھی ہے، سب سے بڑا ودوان اور اپاسک ہے، سب سے بڑا دوسروں کا شبھ چنتک ہے، کوئی بھی اس کے برابر سمست مانوتا کا شبھ چنتک واہیتیشی نہیں ہے۔ اس کے پاون استتو سے ہی سموچا برہمانڈ باقی ہے، اس کے آدیشوں کا پالن مہان ایشور کی اپاسنا ہے، وہ نیائے اور شانتی کا ایشوریہ دوت ہے۔ اس کے آگمن پر دنیا اپنے گپت خزانوں کو اگل دے گی، دنیا کے کسی بھی کونے پر کسی پر اتیاچار نہیں ہوگا، سموچی دنیا نیائے اور شانتی سے بھری ہوگی، ہر اور شانتی ہی شانتی ہوگی، ہر انسان کے اندر موجود شمتائیں و یوگیتائیں نکھر کر سامنے آئیں گی۔ اس سمے لوگ ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں گے، کوئی بھی کسی پر اتیاچار نہیں کرے گا۔
جو انسان مہا مکتی داتا کا واستوک پرتیکشک بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی انتراتما کو پوتر کرے، یعنی اپنے اندر موجود اوگنوں کو ختم کرے، کیونکہ جب تک انسان کے اندر اوگنوں کا ڈھیر موجود رہے گا تب تک وہ واستوک ارتھوں میں امام کے ظہور کی پرتیکشا کرنے والا نہیں بن سکتا، چاہے وہ اپنی زبان سے کچھ بھی کہے۔ آج ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کی سنکھیا کم نہیں ہے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم مہا مکتی داتا کے ظہور کی پرتیکشا کر رہے ہیں، پرنتو وہ جس مہان ہستی کے ظہور کی پرتیکشا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اسے جانتے بھی نہیں۔
इस प्रकार के व्यक्ति जबान से महामुक्तिदाता के जोहर का इंतजार करने का दावा करते हैं और खुद न जाने कितने अवगुणों का नमूना बने हुए हैं। जो इंसान महामुक्तिदाता के जोहर का सच्चा इंतजार करने वाला बनना चाहता है, उसे चाहिए कि सबसे पहले अपने अंदर से अवगुणों का अंत करे और उसके बाद दूसरों को अच्छाइयों का आदेश दे। आज हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग दूसरों को भलाइयों का उपदेश देते हैं परंतु खुद को इससे अपवाद समझते हैं। कुरान और हदीस दोनों में इस प्रकार के लोगों की निंदा की गई है। महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा है कि वो चीजें क्यों कहते हो जिसे तुम खुद अंजाम नहीं देते हो।
कितनी अजीब बात है कि जब कोई किसी मेहमान से मिलने जाता है या उससे मुलाकात की प्रतीक्षा करता है तो साफ सुथरा कपड़ा पहनता है और सही तरह से बातचीत करने की कोशिश करता है, मगर बहुत से लोग ईश्वर के महान प्रतिनिधि के जहूर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने अंदर कोई सुधार ही नहीं करते। यही नहीं, न केवल सुधार नहीं करते बल्कि सुधार की जरूरत भी महसूस नहीं करते। आज जो महामुक्तिदाता का जहूर नहीं हो रहा है तो धार्मिक विद्वानों का कहना है कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि खुद हमारा समाज वास्तविक अर्थों में न तो महामुक्तिदाता का जहूर चाहता है और न ही जहूर के लिए प्रयास कर रहा है।
जो वास्तविक अर्थों में महामुक्तिदाता के जहूर की प्रतीक्षा में न हो बल्कि ऐसे लोग अवश्य हैं जो महामुक्तिदाता के जहूर की प्रतीक्षा में हैं। यद्यपि इस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत कम है। जो लोग महामुक्तिदाता के जहूर की प्रतीक्षा में हैं, वे अपने आप को जहाँ सद्गुणों से सुसज्जित करने में लगे हुए हैं, वही वे यथासंभव हर उस कार्य को भी अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे महामुक्तिदाता के जहूर का मार्ग प्रशस्त हो।
लोग महामुक्तिदाता के जहूर में लेश मात्र भी संकोच नहीं करते और उनका पूरा विश्वास होता है कि आज नहीं तो कल महामुक्तिदाता का जहूर अवश्य होगा और उनके जहूर के बाद पूरी दुनिया से अत्याचार और अत्याचारियों का अंत हो जाएगा, जिसके बाद समूची दुनिया में न्याय व शांति स्थापित होगी। महामुक्तिदाता के जहूर की प्रतीक्षा करने वाला इस बात को जानता है कि जिस हस्ती की वो प्रतीक्षा कर रहा है उसके आने का अर्थ समाज में व्याप्त समस्त बुराइयों का अंत है। चोरी, भ्रष्टाचार, अत्याचार और भेदभाव जैसी हर बुराई का अंत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में समाज में किसी प्रकार की बुराई ही नहीं होगी। महामुक्तिदाता के जहूर से पहले समाज में इतना अधिक अत्याचार और बुराई फैल जाएगी कि गैर मुसलमान भी दिल की गहराइयों से इस बात की अभिलाषा व आकांक्षा करेंगे कि कोई आए जो समाज में व्याप्त बुराइयों से उन्हें मुक्ति दिलाए।
जब लोग इस बात को समझेंगे कि आने वाली हस्ती ईश्वरीय प्रतिनिधि है और वह न केवल जमीन के एक भाग व क्षेत्र के लोगों को हर प्रकार के अत्याचार व अन्याय से बचाएगा बल्कि वो पूरी मानवता को बचाएगा। किसी भी इंसान पर अत्याचार व अन्याय नहीं होगा। महामुक्तिदाता के आगमन का अर्थ संसार से समस्त बुराइयों का अंत है। पूरी दुनिया में ईश्वरीय धर्म इस्लाम के अलावा कोई भी धर्म नहीं होगा। समस्त इंसान इस्लाम को कबूल कर लेंगे। हर तरफ प्रेम, मोहब्बत और न्याय की बयार बहेगी। कोई भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेगा। लोग न्याय व शांति से भरी महामुक्तिदाता की विश्वव्यापी सरकार में रहेंगे। गरीबी और भूखमरी का अंत हो जाएगा। पूरी दुनिया में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह सकेगा कि आज वो भूखा सोया है।
पूरी दुनिया से नफरत की आग का खात्मा हो जाएगा। कितने खुश नसीब वे लोग होंगे जो मानवता के मुक्तिदाता की विश्वव्यापी सरकार में होंगे। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि खुश नसीब वे लोग हैं जो हमारे कायम अर्थात महामुक्तिदाता को देखेंगे, उसका अनुसरण करेंगे और वे हमारी उम्मत के अच्छे और हमसे निकटतम लोगों में से होंगे।
महामुक्तिदाता के पिता हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे और महामुक्तिदाता के बारे में फरमाते हैं, पूरी निष्ठा के साथ उपासना करने वालों का दिल तुम्हारी ओर उस तरह से आकृष्ट होगा जिस तरह पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़कर जाता है। بہرحال جو انسان مہامکتی داتا کا سچا انتظار کرنے والا بننا چاہتا ہے، اس سے چاہیے کہ سب سے پہلے مہامکتی داتا کو پہچانے، یعنی ان کے بارے میں گیان حاصل کرے اور یہ سمجھے کہ وہ کون ہے، کن سدگنوں کے سوامی ہیں اور کس لیے ان کا ظہور ہوگا۔ جب اسے پتا چلے گا کہ آنے والا سدگنوں اور نیائے کی پرتیمورتی ہوگا، اس کی نظر میں کوئی اونچ نیچ نہیں، وہ کسی کے ساتھ کرن کے برابر بھی بھید بھاؤ نہیں کرے گا، وہ دنیا میں نیائے اور شانتی ستھاپت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جو بھی انسان مہامکتی داتا کا سچا انتظار کرنے والا بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی سوچ بدلے، اپنی آستھا و سوچ کو نیائے پریمی بنائے، کسی پر بھی اتیاچار نہ کرے، کسی پر نہ کیول اتیاچار نہ کرے بلکہ اگر سامنے والے نے اس پر اتیاچار کیا ہے تب بھی وہ اس پر اتیاچار نہ کرے اور اس کے ساتھ نیائے سے کام لے۔ جب انسان کا ویوہار اس پرکار کا ہو جائے تب کہیں اسے یہ سوچنا چاہیے کہ شاید وہ مہامکتی داتا کا سچا انتظار کرنے والا بن رہا ہے۔
تو دوستو، کاریکرم کا سمے یہی پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔